तेरी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। ना 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 give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. बचपन तो गया जवानी भी गई, एक पल तो हमें जीने दो जीने दो। ना 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 give me some sunshine, give me some rays, give me another chance, I wanna grow up once again. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Om Shanti. जीवन के अनंत सागर में मैं स्वयं को खोज रही हूं। ये भागती दौड़ती जिंदगी, इसमें मैं कहां हूं? ये रोजमर्रा की जिंदगी, ये रोज की आपदा भी, मैं स्वयं को ढूंढ रही हूं। मैं स्वयं को ढूंढ रहा हूं। कौन हूं मैं, क्या हूं मैं? ऐसा क्यों लगता है कि भागते भागते इतना दूर आ चुका हूं, आ चुकी हूं, कि जीवन का जो लक्ष्य है वो कहीं छूट गया है। आंखों के सामने एक स्क्रीन देखना है, स्क्रीन में मेरा संपूर्ण जीवन है। मेरा बचपन दिखाई दे रहा है, वो माँ बाप, वो घर, वो स्कूल, वो दोस्त, वो खेलकूद, वो निरागस बचपन, कैसी खुशी थी, कैसा उमंग था, कैसा उत्साह। और आगे जीवन के इस स्क्रीन में मैं देख रहा हूं, वो मेरा स्कूल, वो टीचर्स, वो एग्जाम्स, वो खेलकूद, वो कॉम्पिटिशन्स, और आगे वो कॉलेज, वो केयर फ्री लाइफ, वो एम्बिशंस, कुछ करने की चाह, वो करियर, और आगे देख रहा हूं वर्तमान समय, मेरा घर, पति पत्नी बच्चे, ऑफिस, रोज का ट्रैवलिंग, मित्र, क्या जीवन में खुशी है या जीवन से खुशी कहीं खो गई है। कहीं ये सारा एक कारागार की तरह तो नहीं, एक प्रिजन की तरह जिसमें मैं बंद गया हूं। वो सूरज की किरणें कहां हैं? कहीं बढ़ते बढ़ते गति रुक तो नहीं गई। क्या ये जीवन जैसा जीना है वैसा जी रहा हूं, या सारी उम्र हम बस मर मर के ही जी रहे। क्यों हृदय से पुकार निकलती है, गिव मी दैट सनशाइन अगेन, व्हाई दिस डार्कनेस, दिस सॉरो, दिस ग्लूम, व्हाट प्रिजन, व्हाट बॉन्डेज, व्हाट चेन्स। What are these clouds of gloom? Where I am? What I am? Am I lost? Is this the goal of life? Is it not that something is missing somewhere? Why this vacuum? Give me back that sunshine. Why my growth has stopped? I wanna grow up once again. Let me come out of this bondage, this life of slavery, slavery of senses, slavery of emotions. Why this psychological block? Who I am? Am I the one that I show to the world? Or something else? Someone else? Stop. Think. डीप साइलेंस, एक गहरा मौन, संसार के सभी विचार सभी बातों से परे इस अलौकिक वायुमंडल में, इस शांत वातावरण में मन शांत हो गया है, एकाग्र हुआ है। कैसी अलौकिक तरंगे हैं, शांति के प्रकंपन है चाहो, मुझे अपने आप को ढूंढना है। मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, व्हाट इज द गोल ऑफ दिस लाइफ। लेट मी स्टॉप, रिफ्लेक्ट, थिंक, रीथिंक। आवाज से परे moments of silence, and let me tap into my inner freedom. Let me unleash the power that's within me. Let me break free of this life of slavery. The inner cry of the soul is for liberty. The very depth of the heart craves for freedom. And with this, let me prepare my mind to enter into the subconscious. And let me enlighten those dark corners इस संकल्प के साथ मैं अपने मन को तैयार करता अपने अंदर की यात्रा के लिए, एक आंतरिक यात्रा, an inner journey. ओम शांति। 14th जुलाई 1789, विश्व इतिहास में फ्रांस में क्रांति हुई थी। कई वर्षों की गुलामी से मुक्ति का दिवस था। फ्रांस में, पेरिस में एक बहुत बड़ा फोर्ट, किला या प्रिजन कहो, जो अब भी है, उस प्रिजन में, उस कारागार में, उस कारागृह में हजारों लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। कोई कोई वहां 20 साल से था, कोई 30 साल से, कोई 40, कोई 50, कोई 60, लगभग 500 लोग बंद थे, क्योंकि फ्रांस उस समय गुलाम था। और उनके हाथों में बेड़िया थी, पैरों में बेड़िया थी, चाबिया कहां रखेंगे, इतनी चाबिया, वो सारी चाबिया कुएं में फेंक दी गई थी, कौन संभालेगा। और वो लोग अपने डार्क सेल में प्रिजनर की तरह रहते थे। कोई अपनी जवानी में आया था, अभी बूढ़ा हो गया था, उन्हीं बेड़ियों के साथ रहते थे, भोजन करते थे, सब कुछ करते थे। और अंधेरी कोठरी, द डार्क सेल्स। और अचानक एक दिन फ्रांस में क्रांति हुई, और सभी क्रांतिकारियों ने यह निर्णय किया कि हम इन सभी को मुक्त कर देंगे। सभी क्रांतिकारी उस किले में, बैस्टाइल का वो किला, 14 जुलाई 1789, सभी क्रांतिकारी घुसे और कहा कि फ्रांस अब आजाद है, हम सब तुमको छुड़ाने आए हैं, निकलो यहां से। वो सब कहने लगे, नहीं, हमको यहीं रहना है। आश्चर्य हुआ, ये क्या कह रहे हैं, हम तो अब तुमको छुड़ाने आए हैं। और वो खींचने लगे उनको, पर वो आने से मना करने लगे, फिर भी खींचा उनकी बेड़िया, उसकी चाबी तो थी नहीं, सब क्रांतिकारियों ने तोड़ी, रिवॉल्यूशनरीज पैरों की बेड़िया तोड़ी। वो कहने लगे, हम बाहर जाके करेंगे क्या, हमें तो पता ही नहीं, हमारा कोई है ही नहीं बाहर, 20 साल 30 साल 40 साल से यहां रह रहे, कौन जॉब देगा, कौन सी नौकरी करेंगे। पर क्रांतिकारियों ने एक नहीं सुनी, क्योंकि स्वतंत्रता, फ्रीडम फाइटर्स, उनको तो बस सबको मुक्त करना था, और सभी को, सारे प्रिजनर्स को छुड़ा दिया और सबको बाहर ले आए जबरदस्ती। परंतु आश्चर्य तब हुआ जब वो सारे कैदी शाम को वापस अपने अपने प्रिजन में आ गए। क्यों? क्योंकि अंधेरे की इतनी आदत पड़ गई थी कि प्रकाश उनसे सहन नहीं हुआ। सोते समय उनको बेड़ियों की आवश्यकता है, नहीं तो नींद नहीं आने लगी किसी किसी को। वापस आने लगे, कहने लगे फिर से बेड़िया पहना दो। वापस आए, कहने लगे हमको फिर से इसी प्रिजन में, बेस्टाइल में रहना है। बड़ा आश्चर्य है, जिसको जिसकी आदत पड़ गई है बस वही चाहिए। अंदर से चाह तो है मुक्ति की, फ्रीडम की, लिबर्टी की, परंतु हम चाहते हैं कुछ और है, और अंदर करते कुछ और। और लंबा समय तक बंधनों में रहे, वो बंधन ही अच्छे लगते हैं। लंबा समय डार्कनेस में रहे, वो अंधेरा ही पसंद आता है। अचानक से अगर रोशनी मिल जाए तो घबराहट होती है, और जब अंधेरे में है तब चिल्लाते रहते हैं कि मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे मुक्त होना है, कितना दुख है संसार में। पैराडॉक्स। उसी तरह एक दूसरी कहानी है, एक स्वतंत्रता सेनानी रिटायर्ड घूमने के लिए कहीं गया, किसी हिल स्टेशन में, किसी वादियों में, और वहां घूम रहा था। अचानक उसे आवाज आई, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, जैसे कोई पुकार रहा है, जैसे कोई चिल्ला रहा है, जिसे जैसे किसी को स्वतंत्रता चाहिए, एज इफ समबडी इज प्रिजनर एंड क्राइंग आउट फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। उसे आश्चर्य हुआ, ये कौन है जो स्वतंत्रता पुकार रहा, और वो स्वयं भी स्वतंत्रता सेनानी है। वो देख नहीं सकता कि कोई गुलामी में है, ढूंढने लगा कि आवाज कहां से आ रही है, पता चला ये एक होटल से आ रही है, पहाड़ियों की उन वादियों में। वो उस होटल में पहुंचता है और पाता है एक तोता है पिंजड़े में जो बंद है, और जो स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्ला रहा है। उसे दया आती है क्योंकि फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता सेनानी है, छुड़ाना है उस तोते को। डायरेक्ट तो छुड़ा नहीं सकता क्योंकि होटल का मालिक बैठा है। वो कहता है मुझे यहां रुकना है एक रात, कमरा लेता है उस होटल में और रात भर रुकता है। और जब आधी रात होती है तो चुपके से नीचे आता है रिसेप्शन में, जहां पर वो पिंजड़ा है और जहां वो तोता चिल्ला रहा है स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। वो पिंजड़े का दरवाजा खोलता है, अंदर हाथ डालता है उसको छुड़ाने के लिए, परंतु तोता उसको चोंच मारता है, तोते को आना नहीं है। परंतु वो मानेगा थोड़ी, स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर, मुक्ति तो दिलानी है एक एक को पकड़ के, चाहे कोई माने या ना माने। उसको पकड़ा और बाहर निकाला और उड़ा दिया आकाश में, और इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, कोई मुक्त किसी को मुक्ति दे दी। और जाके सो गया। चैन की नींद आई किसी को बंधन मुक्त करके। सुबह हुई, फिर से आवाज आई, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उसको लगा ये किसकी आवाज आ रही है अब, तो देखता है पिंजड़े में तोता वापस आ गया है और वहां ही बैठ के चिल्ला रहा है, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। व्हाट अ पैराडॉक्स। बंधन में है, प्रिजन में है, वहां बैठकर चिल्लाता है कि मुझे छुड़ाओ, और जब छुड़ा दिया तो बेचैनी होती है। मुक्ति नहीं चाहिए, वो बंधन ही पसंद है, वो प्रिजन ही पसंद है। सब कुछ टाइम पर मिल जाता है, खाने पीने का। फ्रांस के उन कैदियों ने कहा हम कहां क्या कमाई करें और क्या खाएंगे, हमें तो यहां पर भोजन मिल जाता है, हम यहीं खुश है, इन बेड़ियों के साथ ही खुश है। क्या ये हमारी अवस्था तो नहीं? और हमारी बेड़िया बहुत सूक्ष्म है। Our bondages are subtle, the chains are invisible. हम देख नहीं पाते, but probably we all are in chains. But there is an inner cry, but the inner conscience, अंदर से पुकारता है कि ये सब व्यर्थ है, मुक्त हो जाओ इससे। बट देन वी डू नॉट नो हाउ टू गेट रीड ऑफ इट। तो आज आप सब यहां आए और जिस हॉल में आप बैठे हैं, पिछले 2-3 दिन से यहां पर साइलेंस रिट्रीट चल रही है। कितने सारे भाई बहने यहां आकर मेडिटेशन कर रहे हैं, तो यहां के वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हैं। और रोज वैसे भी जिस प्रांगण में आप हैं, ये सारा प्रांगण जहां पर राजयोग का अभ्यास होता है, ये सारी बहनें जो यहां रहती है, ये सारे भाई जो यहां सेवा करते हैं, ईच वन ऑफ देम इज अ डेडिकेटेड पर्सन। संसार के युवा को हम देखते हैं और यहां के लोगों को देखते हैं, बहुत आश्चर्य होता है। और जहां से हम आए हैं माउंट अबू, वहां पर इसका हेडक्वार्टर्स है, वहां पर हर 15 दिन में 20-25 लोगों का संगठन होता है, और जो परमानेंट वहां रहते हैं वो सारे यूथ हैं, सारे यूथ। और ये जो संस्था है, इसमें मुख्य सभी बहनें सभी सेवा केंद्रों पर, जैसे बताया परिचय में, हजारों लाखों स्टूडेंट्स और उनका संचालन ये सारी बहनें कर रही है। ईच वन ऑफ देम इज डेडिकेटेड डिवोटेड फुल्ली। स्वामी विवेकानंद ने कभी एक भविष्यवाणी की थी। He died in 1902. This institution got established in 1936. उन्होंने कहा था एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व को परमात्मा संदेश पहुंचाएगी। A day will come when Indian lady clad in white shall spread the message of God the world over. And probably these are those sisters who have dedicated their lives for the cause of spirituality, for the cause of world peace, and spreading the message of God the world over. So, this प्रांगण में अभी आप बैठे हैं, दिस इज एन एक्सट्रीमली प्योर एटमॉस्फियर, जहां आते ही मन शांत हो जाता है। और एक यात्रा जो हमें अपने आप से करनी है, और जो बहुत सूक्ष्म यात्रा है, और जो आंतरिक यात्रा है, आज हम उसी यात्रा की शुरुआत करते हैं इस सभा में। हर एक को अपने आप से प्रश्न पूछना है, मैं जो हूँ और जैसा हूँ और जहाँ हूँ अभी इस समय जीवन में, क्या वही संपूर्ण सत्य है या इससे परे भी कोई जीवन है? क्यों अंदर रिक्तता लगती है? एक बहुत बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन रिसर्चिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बट टूवर्ड्स द फैग एंड ऑफ लाइफ आई फील लाइफ हैज स्लिप थ्रू माई फिंगर्स। मैंने अपना सारा जीवन अनुसंधान में, संशोधन में बिताया, अणु परमाणु क्या है ये जानने में, पर ऐसा क्यों लगता है कि जीवन की इस शाम में, जीवन की इस संध्या काल में, जीवन के इस बुढ़ापे में ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जो करना था वो किया ही नहीं? ऐसा क्यों लग रहा है कि जीवन में जो मुख्य चीज है वो छूट गई? ऐसा क्यों लग रहा है कि जीवन फिर भी रिक्त है? स्पिरिचुअल एक वैक्यूम है अंदर। सब कुछ है, पैसा है, जितना चाहिए उतना पैसा है, नाम है, पोस्ट है, पोजिशन है, संबंध है, पत्नी बच्चे सब कुछ ठीक है, सोसाइटी में समाज सेवाएं बहुत की, अपने फील्ड में रिसर्च किया और मानवता की सेवा की, सब कुछ किया, उसके बाद में भी अपूर्णता है। Why? शायद something is missing, perhaps there is a missing link. And what is that missing link? To begin this journey is the beginning of life. और वही यात्रा हमें करनी है। हम हैं कौन, हम आए कहां से और कहां किन बंधनों में फंस गए हैं? क्या इन सभी बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है? फ्रांस के वो कैदी, उनके पास तो स्थूल बेड़िया थी और हम जो है हमारी बड़ी सूक्ष्म बेड़िया है। सटल चेन्स, इनविजिबल चेन्स, और हर आत्मा की आंतरिक प्यास मुक्ति की है। कोई नहीं चाहता बंधनों में फंसा रहे, कोई नहीं चाहता किसी प्रिजन में फंसा रहे, परंतु उस मुक्ति से उसे डर भी लगता है। क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आत्मा जो बंद है वो मुक्त हो जाए? तो इस सत्र में, इस क्लास में, इस सेशन में हम ऐसी कुछ बातें देखेंगे जिससे हमें अपने आप को मुक्त करना है। वी विल सी एटलीस्ट 14 पॉइंट्स, 14 टाइप्स ऑफ चेन्स फ्रॉम विच वी वॉन्ट टू फ्री आवरसेल्व्स। और ये जो चेन्स हम बताने वाले हैं ये बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सटल, दिखाई नहीं देती, और हम उसे शायद मानते भी नहीं कि ये भी एक चेन है, ये भी एक बंधन है। दिस इज ऑल्सो अ बॉन्डेज, दिस इज ऑल्सो प्रिजन, दिस इज ऑल्सो एज इफ वी आर बिहाइंड द बार्स एंड वी कैनॉट सी वॉट इज देयर आउटसाइड। और जो रूटीन है उसी में चल रहे हैं, क्योंकि जो मुक्ति है दैट इज समथिंग अननोन। जैसे दिखाया है, एक राजा था और जो भी अपराधी होते थे, दुर्दांत अपराधी, वर्स्ट क्रिमिनल्स, और जिनको फांसी की सजा दी जाती थी, ही यूज टू गिव देम ऑप्शन, ये एक तरफ तो फांसी है जो तो तुम्हें मरना ही है क्योंकि अपराधी ऐसा है, सुना चुके हैं फांसी की सजा। दूसरा एक ऑप्शन है, एक बहुत भयंकर दरवाजा, एक पहाड़ी है और एक बहुत भयंकर खतरनाक दरवाजा। वो कहते थे कि एक तो ये और दूसरा, वो दरवाजा खोल के तुमको उधर धकेल देंगे अंदर, और वो पहाड़ी पर है दरवाजा। तो अब तक जितने भी अपराधी थे सबको जब ये ऑप्शन, विकल्प दिए गए, सबने कहा ये ठीक है, फांसी का फंदा, यही मरेंगे, वहां कौन जाएगा? एक बार ऐसा ही एक अपराधी आया, उसने भी कहा कि फांसी का फंदा, वहां कौन जाएगा, इतना खतरनाक दिखने वाला दरवाजा, अंधेरा है पूरा। पर वो मरते मरते एक प्रश्न पूछता है राजा से, आई हैव वन क्वेरी, मैं मर तो रहा हूं, मरने से पहले एक बात बता दो, ये जो दरवाजा इतना खतरनाक है, सेकेंड ऑप्शन, उसके उधर क्या है? एंड द किंग सेज, उसके उधर कुछ भी नहीं, फ्रीडम। But nobody takes that option. Kyun? Fear of the unknown. मनुष्य का सबसे बड़ा भय कौन सा है? मृत्यु का नहीं, स्वजनों की मृत्यु का नहीं, रिलेटिव्स की डेथ का नहीं, रिलेटिव्स की डिसीजेस का नहीं, खुद की डिसीजेस का नहीं. द ग्रेटेस्ट फियर इन द वर्ल्ड इज द फियर ऑफ द अननोन. क्या होगा पता नहीं, क्या होगा डर, फियर. सबसे पहला ऐसी कुछ बातों की हम चर्चा करने वाले, और चर्चा करते करते ही जैसे जैसे सुनते जाएंगे अपने आप को चेक करते जाना है, अपने ही जीवन को चेक करते जाना है, अपनी ही व्यस्त दिनचर्या को चेक करते जाना है. सुबह से लेकर रात तक हम क्या करते हैं उसमें कहीं ये बातें तो नहीं? अगर है तो नाउ इट इज द टाइम टू वेक अप एंड टू फ्री आवरसेल्व्स. और कोई दूसरा नहीं आने वाला है जो हमको उठाए, जगाए और मुक्त करे. हमें खुद को खुद ही मुक्त करना है. सबसे फर्स्ट आलस्य, लेजीनेस. दिस इज द चेन. वेरी सटल चेंज चेन. आज का काल काम कल पर डाल देना. आज नहीं कल, आज नहीं कल. क्यों? क्योंकि हम भाग रहे हैं, हमें कुछ दूसरी चीजें लेनी है. ये काम हम बाद में करेंगे. स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, ये सब बाद की बात है, बूढ़े लोगों के लिए. वी आर यंग न्यू ब्लड, वी हैव नो टाइम. और आलस नए नए कारण रचते हैं. हम अपने आप को यदि देखें तो इस लेजीनेस के चेन में हम सब बंधे हैं. स्पिरिचुअल लेजीनेस, स्पिरिचुअल लैसिट्यूड इसको कहते हैं साइकोलॉजी में. आज नहीं कल, बाद में, बाद में, बाद में, बाद में, बाद में. एक तो ये हो गया स्पिरिचुअल साइड का, दूसरा है सटल ग्रॉस. आज का काम कल, आज नहीं कल, बाद में. हमारी अगर दिनचर्या हम देखें तो उसमें रोज एक काम करना है हर एक को. अर्ली मॉर्निंग बिफोर वी स्टार्ट अवर डे मेक अ चेकलिस्ट कि आज मुझे क्या क्या करना है. दिस इज नोन एज टाइम मैनेजमेंट. उसमें दो चीजें होती है, टाइम बॉक्सिंग, टाइम बफरिंग. टाइम टेबल बना लेना, प्रायोरिटाइज कर देना. आज सारे दिन भर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी मुझे करनी है. दिस इज द प्रायोरिटी, फर्स्ट थिंग, अर्जेंट थिंग. ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. एक टाइम बॉक्स, टाइम लिस्ट बना लेना. दिस इज नोन एज टाइम बॉक्सिंग. 9 o'clock से 10 o'clock क्या करना है, 10 o'clock से 11 o'clock क्या करना है. ऐसा ना हो कि दिनचर्या में बहुत सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया. जो समय को नष्ट करता है एक दिन समय उसको नष्ट कर देता है. जो समय को सफल करता है वो स्वतः ही सफल हो जाता है. इस संसार में जितने साइंटिस्ट हुए, जितने महान लोग हुए, उन्होंने सब क्या किया? दे जस्ट डिड वन थिंग. दे डिड नॉट वेस्ट देयर टाइम इन द फ्रिवोलस एंड द वर्ल्डली थिंग्स. दे वर फोकस्ड, और वो फोकस ने ही उनको इतना महान बना दिया. चाहे वो कोई भी हो, अपने अपने फील्ड में एक एक को अगर देखे तो दे वर टोटली डिवोटेड टू इट, टोटली डेडिकेटेड. और दूसरा कुछ उनको सोचता नहीं था. आज का काम बस अभी करना है, इसी वक्त करना है. तो ये जो आलस्य, स्टडी योरसेल्फ, लेजीनेस. वेयर इज द लेजीनेस, वेयर इज द केयरलेसनेस इन लाइफ. मुझे अपने आप को जगाना है इस केयरलेसनेस से. ये बड़ा एक फ्रीडम है. दिस इज टैपिंग इनटू माय इनर फ्रीडम. लेजीनेस इज एन स्लेवरी, क्योंकि वो संस्कार है, वो आदत है, वो एडिक्शन है. एक वैसा ही करने की आदत हो जाती है, और जो एक बार आदत बढ़ गई, पड़ गई, फिर उससे हम छूट नहीं पाते. जैसे अमेरिका का एक बहुत फेमस ऑथर कभी हुआ है, साइकोलॉजिस्ट जेम्स एलन. जेम्स एलन ने लिखा है एक जगह कि जब मैं जवान था, एक बार न्यूयॉर्क की सड़क में खड़ा था और बहुत खुराफती था, मिस्चीवियस. देखा एक आदमी वहां से आ रहा है, उसके सिर पर बहुत सारा सामान है, और वो इज अ एक्स मिलिट्री मैन. तो मुझे लगा कुछ शरारत करते हैं. और जब वो इतना सारा सामान लेके आ रहा था, जेम्स एलन ने लिखा, मैंने जोर से चिल्लाया अटेंशन, तो वो जो आदमी था एकदम अटेंशन हो गया और सारा सामान नीचे गिर गया। वो घुसते घुसते में आया और कहा कि क्या तुमने अटेंशन बोला? जेम्स एलन कहते हैं, हाँ मैंने कहा, क्यों? इस देश में अटेंशन कहना पाप है, इट्स अ क्राइम। वो कहते हैं, क्राइम तो नहीं है बट आई एम एन एक्स मिलिट्री मैन, और जैसे ही तुमने अटेंशन किया मैं अटेंशन हो गया, सामान नीचे गिर गया। क्योंकि अटेंशन सुनने के बाद अटेंशन होने की आदत बहुत पुरानी है। वो कहता है, अगर मैं मर भी जाऊं और कब्र में हूं और कोई अटेंशन कह दे तो शायद खड़ा हो जाऊंगा निकल के। हैबिट्स आर सो डीप रूटेड इन द सिमिलर मैनर, द हैबिट ऑफ केयरलेसनेस, द हैबिट ऑफ लेजीनेस हैज गॉन सो डीप इन टू द सबकॉन्शियस माइंड। और उससे मुक्त होने की विधि है फर्स्ट अवेकनिंग, फर्स्ट जानना कि वी आर लाइक दैट, मैं बन गया हूं वैसा, अभी मुझे जागना है। आप में से कितने हैं जो अर्ली मॉर्निंग वॉक करते? बस। और बाकी आहा, बिस्तर पर रजाई लेकर ठंडी ठंडी हवाएं, यू आर मिसिंग अ लॉट। वो भी एक आलसी है। इस संस्था में, इस इंस्टीट्यूशन में, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक नियम है, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन, जिसको हम कहते हैं अमृत वेला। सुबह 3:30 बजे गीत बजता है जागरण का, 4 बजे से 4 to 4:45 मेडिटेशन होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने सेंटर्स है। और आप अगर माउंट अबू आओ और वहाँ जो हेडक्वार्टर्स है, वहाँ तो लोग उससे भी पहले चालू कर देते, कोई 2 बजे चालू करता है, कोई 3:30, कोई 4:45, बट 4 इज इंटर ऑफिशियल टाइम। 4 to 4:45 अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन, 7 to 8 स्पिरिचुअल क्लास होता है। वरना मॉर्निंग की शुरुआत ही इतनी पावरफुल हो रही है, मॉर्निंग मेडिटेशन हो रहा है, उसके बाद में एक्सरसाइज, वॉकिंग, और उसके बाद में स्पिरिचुअल क्लास, माइंड में क्या डाल रहा है, क्या डाला जा रहा है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, और फिर उससे दिनचर्या की शुरुआत हो रही। और हम उठे, उठने पर सबसे पहले मिस कॉल, व्हाट्सएप, मैसेजेस, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर में क्या, किसने क्या कर दिया, इसका खून, उसका खून, निगेटिव एनर्जी, अर्ली मॉर्निंग निगेटिव एनर्जी जा रही है। और वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक इज टू बी इन कंपनी ऑफ नेचर। एक बहुत बड़े लेखक ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, एक बार मेरा और मेरे पिताजी का पूरा रात झगड़ा चला, इतना झगड़ा हो गया, मैं तो जवान था और पिताजी बूढ़े, इतना झगड़ा हुआ कि सुबह के 4 बज गए झगड़े करते करते। और फिर लास्ट में मैंने कहा कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा। पिताजी ने कहा, ठीक है तू इस, हम दोनों में से या तो तू जा या तो मैं जाता हूं। उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, मैंने, मुझे नहीं रहना है आपके घर में, और निकल गया। और निकलने के बाद पता चला पैसे तो है ही नहीं जेब में, गुस्से गुस्से में निकल गया, और इतने सुबह सुबह ना टैक्सी ना गाड़ी ना कुछ, वॉकिंग चालू कर दिया। चलने लगा, चलने लगा, चलने लगा, अर्ली मॉर्निंग आवर्स, फ्रेश एटमॉस्फियर, 5 बज गए, चलते रहा चलते रहा, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलते 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 उसे पता चला, अरे गलती तो मेरी है, माफी तो मुझे मांगना चाहिए। ये उसने लिखा है बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग में, एनी केम बैक, सॉरी। क्यों बुद्धि खुल गई? मॉर्निंग, फ्रेश एटमॉस्फियर, पंछियों की चहचहाट, सूरज अभी उग रहा है, फ्रेश एयर है, माइंड शांत है। फर्स्ट स्लेवरी, फर्स्ट चेन इज द चेन ऑफ लेजीनेस। इससे बाहर निकालना है अपने आप को। स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग वॉक, लर्न मेडिटेशन, और टाइम निकालना है मेडिटेशन के लिए। वो आपको कहीं पर भी सिखाया जाएगा, किसी भी सेवा केंद्र में, व्हाट इज दिस मेडिटेशन, व्हाट मींस, व्हाट डज इट मीन, इज इट जस्ट समथिंग टू बी डन फॉर 2 आवर्स, 1 आवर, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, एंड देन इट्स ऑफ? नो, इट्स लाइफ स्टाइल। मेडिटेशन इज द नॉट द प्रोसेस ऑफ डूइंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग। कुछ करना नहीं है उसमें, होना है। और होना वो है जो हम ऑलरेडी है, जो हम हैं, जो हमारा स्वरूप है. नॉट जस्ट दिस बॉडी नच भाती भूत संगम. आई एम नॉट जस्ट दिस बॉडी, दिस असेंबलेज ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज एंड टेंडन्स एंड मसल्स, बट समथिंग बियॉन्ड तद ब्रह्म निष्कलम अहम. आई एम समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी. दैट इज माई रियल नेचर, वो मेरा सच्चा स्वरूप है. दूसरी चेन कहो, या जिससे हमें मुक्त होना है, वो है बहानेबाजी, एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूजेस. ये क्यों नहीं करते? हमारे पास टाइम नहीं है. वो क्यों नहीं करते? हमारे पास कारण रेडी है पहले से. हम MBBS में थे तो कुछ कुछ स्टूडेंट को आदत ही थी लेट आने की. कुछ गर्ल्स थी वो भी लेट आती थी. टीचर पूछते क्यों लेट क्यों आई? सर वो मेरी चप्पल टूट गई थी आते आते. अच्छा ठीक है. बॉयज तुम्हारा क्या हुआ था? सर मेरा शूज टूट गया था. ऐसे ऐसे बहाने और ऐसे ऐसे टीचर समझ जाता था. जैसे एक बार एक मेडिकल कॉलेज में एग्जाम थी और 4 स्टूडेंट थे, वो भूल ही गए एग्जाम है और वो पार्टी मनाने चले गए. और पार्टी पूरी होने के बाद याद आया, अरे कल तो एग्जाम है, अब क्या करें, कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई. तो उन्होंने क्या किया, जो कार में गए थे 4 विद्यार्थी, पूरा ग्रीस लगा लिया अपने कपड़ों को और वही कार लेके सुबह कॉलेज में पहुंचे और प्रोफेसर से कहा, हम तो आ रहे थे, कार खराब हो गई, पूरी रात हम जाग के आए, देखो पूरा कपड़े खराब हो गए, प्लीज हमको 2 दिन और दे दो, ओनली 2 डेज. और हमारी कार का टायर पंक्चर हो गया था. प्रोफेसर ने सोचा अच्छा ठीक है, 2 दिन के बाद. और 2 दिन उन 4 विद्यार्थी ने इतनी पढ़ाई की और पूरा तैयार होके आ गए एग्जाम देने के लिए, रीअपियर. पर प्रोफेसर ने कहा एक शर्त है, चारों को अलग अलग कमरे में बिठाया जाएगा और 2 ही प्रश्न है 100 मार्क्स के. पहला प्रश्न, आपका नाम क्या है, 1 मार्क. सेकेंड क्वेश्चन, विच टायर गॉट पंचर्ड, फ्रंट रियर राइट लेफ्ट, फ्रंट राइट फ्रंट लेफ्ट, रियर राइट रियर लेफ्ट. बस इसको 99 मार्क्स. बुरी तरह फंस गए, कौन सा टायर पंचर हुआ. तो हमारी आदत क्या है, बहाने बनाने की, एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूजेस. कब तक एक्सक्यूज करते रहेंगे, ये क्यों नहीं किया, क्योंकि ऐसा था. मेडिटेशन क्यों नहीं सीखते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है. स्ट्रेस से मुक्त होना है बस. जस्ट टीचर स्ट्रेस मैनेजमेंट, बाकी हमारी जो दिनचर्या वही रखेंगे हम, उसको चेंज नहीं करना है. बाकी हमको बस सिखा दो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, हमको बस मेडिटेशन सिखा दो, हम घर पे जाके करते रहेंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ लाइफस्टाइल, यू हैव टू लर्न इट एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. 1-2 दिन में नहीं होगा. तो एनी ग्रेट वर्क नीड्स डेडिकेशन, उसमें कोई भी बहाना नहीं चलेगा. एनी ग्रेट वर्क, एक एक म्यूजिशियन को देखो संसार में जो है, दिन रात प्रैक्टिस करते हैं म्यूजिक की, तब कहीं जाके मेलोडी निकलती है. AR रहमान ने एक जगह लिखा है, Whenever I have to compose a new music, I just retire from the world. I withdraw myself from everything. I just go in solitude, cocoon myself in a chamber. Just shut off all the thoughts. ये गीत बनेगा, ये गीत निकलेगा तो लोग क्या कहेंगे, कैसी तारीफ होगी, स्तुति होगी, अवार्ड मिलेगा, ये सारा डिस्टर्बेंस है. आई हैव टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस थॉट्स एंड गो अलोन इन साइलेंस. देन ओनली आई कैन थिंक ऑफ न्यू ट्यून, न्यू मेलोडी, न्यू म्यूजिक. नहीं तो ये सारे विचार आते रहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तारीफ होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा. दीज आर डिस्टर्बेंसेस, वेरी सटल डिस्टर्बेंसेस, साइकोलॉजिकल थॉट डिस्टर्बेंसेस. तीसरा कंफर्ट जोन। हर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन क्रिएट किए हुए हैं और उसी में जीता है, जरा सा भी उससे बाहर नहीं निकलना है उसको। ये मेरा ऑफिस, ये मेरा घर, ये मेरा ट्रैवलिंग टाइम, ये मेरा रेस्ट का पीरियड, बस इसके अंदर रहना है। इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन लाइफ यू हैव टू इंस्टॉल न्यू कंफर्ट जोन्स। इफ यू वॉन्ट टू प्रोग्रेस इन लाइफ यू हैव टू लेट गो ऑफ द ओरिजिनल कंफर्ट जोन्स एंड एंटर इन टू द मोस्ट अनकंफर्टेबल जोन। एक विचारक है जर्मन का, फ्रेडरिच निट्शे, उसने लिखा है इफ यू वॉन्ट टू लिव लाइफ लिव डेंजरसली। जीवन अगर जीना है तो कैसा जियो? जोखिम के साथ, कंफर्ट के साथ नहीं, कंफर्टेबल नहीं। सब कुछ ठीक है, इनका भी ठीक है, उसका भी ठीक है, सब ठीक चल रहा है। दिस इज नॉट लाइफ। लाइफ इज अबाउट एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, न्यू चैलेंजेस, लिव डेंजरसली। हर एक ने अपना कंफर्ट जोन निर्माण करके रखा है, बस इसमें जीना है और सारी उम्र उसमें बीत जाती है। कैनॉट बी एक्सप्लोर द अनचार्टेड सी, द अननोन, जो पुकारता है, जो खींचता है, उस आवाज को हम दबा देते हैं। जो चल रहा है वो चलने दो, ये ठीक ठाक चल रहा है, और कुछ नहीं करना है हमको। तो तीसरा है कंफर्ट जोन से मुक्त होना और नए कंफर्ट जोन इंस्टॉल करना इधर सॉफ्टवेयर में, इंस्टॉल न्यू कंफर्ट जोन्स, और धीरे धीरे जो नए कंफर्ट जोन है उसके साथ हम कंफर्टेबल होते जाएंगे, एंड देन देयर विल बी जॉय। जो पहले चीज यहां रहना, यस यहां कैसे रहे हम, यहां तो बिल्कुल अनकंफर्टेबल है, कुछ भी ठीक नहीं है यहां पर, बट यू परसिस्ट और उसको ठीक करो। ठीक लोगों के साथ ठीक रहना तो कोई भी कर सकता है। ऑफिस में हमको जॉब मिली, हम गए ऑफिस में, देखा बॉस ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है, सब गड़बड़ है, सब टॉन्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, टांग खींचते हैं, कुछ कुछ करते हैं। ऐसी जगह जाना जहां सब कुछ कंफर्टेबल है, इट्स वेरी इजी, बट टू एंटर सच अ प्लेस वेर एवरीथिंग इज डिस्टर्ब्ड एंड देन टू रिमेन स्टेबल इज समथिंग फॉर विच यू विल गेट मार्क्स। कंफर्ट जोन्स, न्यू कंफर्ट जोन इंस्टॉल करने, जो पहले बहुत कठिन लगेंगे पर धीरे धीरे आसान हो जाएंगे। टेक रिस्क्स, टेक चैलेंजेस। उसके बाद में फोर्थ, डिजिटल चेंज। ये क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक चेंज? एक व्यक्ति होता है, सोता है, एक ही स्वप्न दिखता है रोज रात में, उसके बिस्तर के नीचे सांप, बिच्छू, अजगर, क्रोकोडाइल, और रोज उठता है धड़धड़ धड़धड़, क्योंकि रोज एक ही स्वप्न है, ओनली वन ड्रीम। बेड के नीचे क्या है? ये सब जानवर दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं इलाज कराओ, कितने सारे डॉक्टरों के पास जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट, MRI, CT scan, सब कुछ करा लिया, पर स्वप्न तो जाता ही नहीं। अब दवाइयां खा रहा है फिर भी नहीं जाता, एक ही स्वप्न दिखता है रोज, और उठता है तो धड़धड़ धड़धड़ धड़धड़, और उदास हो जाता है। और एक दिन उठता है इतना खुश और खुशी खुशी से घूमता है, लोग पूछते हैं आज क्या हुआ, वो स्वप्न नहीं आया क्या? वो कहते स्वप्न नहीं आया, मेरा एक भाई है, इज अ कारपेंटर, वो आया, उसने बिस्तर के बेड के चार पैर ही काट डाले, क्योंकि बेड ड्रीम में क्या दिखता था, बेड के नीचे, तो मेरा जो कारपेंटर भाई है उसने काट डाले चारों पैर, चार है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसके नीचे बहुत कुछ चलता है। पहले जमाने में युद्ध होता था कुरुक्षेत्र के मैदान में, अभी सोशल मीडिया के कुरुक्षेत्र में युद्ध होता है, लड़ाई चालू है, इसने ये ट्वीट किया, उसने वो ट्वीट किया, इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ये पोस्ट किया, उसने वो पोस्ट किया, ऑनलाइन अब्यूजेस, ऑनलाइन वॉर चालू है अभी, इतना डिजिटल इन्वॉल्वमेंट, इतना खो गए हैं डिजिटल वर्ल्ड में कि निकल ही नहीं सकते उसमें से। बीच में बैंगलोर में एक स्टूडेंट को एडमिट किया गया था, क्या बीमारी थी पता है? टेक्स्टिंग एडिक्शन, टेक्स्ट करने का एडिक्शन, 6-6, 8-8 घंटे टेक्स्ट करती है, मोबाइल से मैसेजेस, व्हाट्सएप से मैसेजेस। वो ऐसा टेक्स्टिंग एडिक्शन हो गया कि बस वो बिना मैसेज के चैन नहीं आता है। अभी एडमिट ट्रीटमेंट चालू है डी एडिक्शन का। सो मच एडिक्शन, और कितना हमारा समय सोशल मीडिया पे चला जाता है, व्हाट्सएप मैसेजेस। यूके में, यूएस में एक स्टडी हुई थी जिसमें यह दिखाया गया कि हर व्यक्ति कितनी बार ईमेल चेक करता है। एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज, उन्होंने फाइंड आउट किया, वन मैन चेक्स हिज ईमेल एटलीस्ट 38 टाइम्स पर आवर। इतनी बार अपना मेल चेक करता है, कुछ आया तो कुछ आया क्या, कुछ आया क्या, कुछ आया क्या, देख लेते कुछ आया क्या। एक घंटे से व्हाट्सएप चेक नहीं किया, कुछ तो आया होगा। हमने इधर से 10 फोटो भेजे थे, उधर से एक भी लाइक्स नहीं आई, कमाल है। सुबह रात को पोस्ट कर दिए 50 फोटो, पिकनिक गए थे 50 फोटो भेज दिए, सुबह देखा सबसे पहला काम सुबह देखते ही कितने लाइक्स आए हैं, हाउ मेनी, और जब दिखा एक भी नहीं तो दुखी, उदास। सो मच इलेक्ट्रॉनिक माया, इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट, डिजिटल इन्वॉल्वमेंट। एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, यंग मैन, बेहोश, उसके साथ उसके दोस्त, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने बोला क्या हुआ क्या हुआ? लोग, उसके दोस्तों ने कहा डॉक्टर साहब कुछ नहीं, फेसबुक का मरीज है, इंटरनेट बंद है 4 दिन से, इसलिए क्या हो गया, बेहोश। एक महिला थी विदेश की जिसको इंटरनेट का इतना एडिक्शन था, इतना एडिक्शन था कि उसको बताया गया कि अभी तुमको ना रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज रहे इससे छुड़ाने के लिए। वो कहती है कि मैं जाऊंगी प्रोवाइडेड देर इज अ वाईफाई देयर, तो ही मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं। कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स का होना चाहिए। डिटॉक्स पता है, वो नेचुरोपैथी सेंटर होते हैं ना, डिटॉक्स कराते हैं, वहां पे जूस वगैरह देते हैं, वैसे डिजिटल डिटॉक्स करना है। माउंट आबू में कॉन्फ्रेंस होती है, मेडिकल कॉन्फ्रेंस, माइंड बॉडी मेडिसिन, उसमें एक बार एक डॉक्टर आ रही थी, HOD किसी डिपार्टमेंट की, और आते आते मोबाइल गुम हो गया। 4 दिन थी वहां कॉन्फ्रेंस में, और उसने अपना अनुभव सुना। पहले तो बहुत परेशान थी, आए बरबर डिस्टर्ब, मोबाइल ही गुम हो गया, सारे नंबर सारा मैसेज सब कुछ है उसमें, कुछ भी नहीं अभी हाथ में। और 4 दिन कॉन्फ्रेंस अटेंड की, लास्ट में अपना फीडबैक एक्सपीरियंस दिया कि भगवान को धन्यवाद जो मोबाइल खो गया यहां आने के पहले। इतना शांति से बीते ये 4 दिन, आज तक ऐसे दिन कभी नहीं बीते पूरे जीवन में। She was quite old, 60-70 years. She said, first time I had peace of mind. Thanks that my mobile got lost. So sometime we have to take out from the busy schedule where there is a digital detox. Keep away from all this. Just go in the company of nature. Just go on the terrace. Just go in the garden. Just go to some spiritual place where you can sit and meditate and be with yourself. Chautha. Digital chains. Tapping into inner freedom means to free yourself from the digital bondages. हाँ, उसका काम बहुत है, उसके उपयोग बहुत है, उसका फायदे बहुत है, जितना है उतना करना है, and then get detached. Offline रहना is a tapasya. Next, ego. Next is ego. हर व्यक्ति एक ईगो में जकड़ा हुआ है। इंग्लिश में एक कहावत है, इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। अहंकार के युद्ध में कौन जीतता है, जो हारता कौन है, जो जीतता है वो हारता है। द विनर इज लूजर इन द बैटल ऑफ ईगो। हर व्यक्ति ये सोचता है कि आई एम राइट, प्रूव करना चाहता है, जस्टिफाई करना चाहता है, दूसरों को एक्सपोज करना चाहता है, वी विल एक्सपोज यू, ऐसे ऐसे हाथ दिखाता है। ये अहंकार है अंदर, और जब तक ये ईगो जितना ज्यादा है देयर इज नो पीस ऑफ माइंड, झुकना पड़ेगा थोड़ा सा. जब तक नहीं झुकेगा ये ईगो शांति नहीं हो सकती. ये बहुत बड़ी स्लेवरी है. एक भारत में फ्रंटियर गांधी नाम से एक व्यक्ति को जाना जाता था, सरहद गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसने एक संस्था की शुरुआत की थी, खुदाई खिदमतगार, 1930s में. वो एक सभा में बैठा था, महात्मा गांधी भाषण दे रहे थे, बहुत बड़ी सभा थी, और सभा में अचानक एक व्यक्ति खड़ा हो गया और वो महात्मा गांधी को गालियां देने लगे, तुम कायर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमको मार देना चाहिए, चले जाओ हमारे देश से. बहुत पब्लिक इंसल्ट, पब्लिक डिसग्रेस. और खान अब्दुल गफ्फार खान भी उसी सभा में बैठा था. उसने देखा इस व्यक्ति ने इतनी गालियां दी पर महात्मा गांधी ने एक शब्द नहीं बोला, मुस्कुराते रहे, चुप, नो रिएक्शन. और ये बात उसको इतनी टच हो गई अंदर से कि ही डिसाइडेड आई हैव टू बिकम लाइक हिम. और उसने बाद में वैसा ही किया. दैट्स व्हाई इज नोन एज फ्रंटियर गांधी. सरहद गांधी का नाम उसको दिया गया. द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा. सो इट इज द ह्यूमिलिटी दैट मेक्स द मैन ग्रेट. दो डिपार्टमेंट में संघर्ष चल रहा है, दो पार्टियों में संघर्ष चल रहा है, दो व्यक्तियों में संघर्ष चल रहा है, पति पत्नी में संघर्ष चल रहा है. वन रीजन, ईगो. कोई भी झुकने को तैयार नहीं है. कोई भी ये नहीं कहता आई एम रॉन्ग. हर एक क्या कहता है, यू आर रॉन्ग. पहले एक्सेप्ट, पहले मानो, बाद में चर्चा करेंगे. नो डिस्कशन तब तक. पहले आके स्वीकार करो कि यू आर रॉन्ग. नेक्स्ट टाइम ऑल डिबेट, ऑल डिस्कशन तो बाद में होगा. जैसे पति पत्नी है, सुबह बहुत भयंकर झगड़ा हो गया दोनों में, ठीक है. झगड़ा होने के बाद पति जाता है और गुस्से में है, आखिर समझती क्या है अपने आप को, वगैरह वगैरह. ऑफिस में काम कर रहा है, 10 बज रहे हैं, फिर सोचता है थोड़ा ज्यादा ही मैंने बोल दिया, इतना नहीं बोलना चाहिए था. फिर 12 बजते हैं, सोचता है गलती थोड़ी मेरी भी तो थी, उसकी नहीं थी. फिर 5 बजता है, सोचता है गलती तो सारी मेरी ही थी, उसकी तो कुछ थी ही नहीं. फिर 6 बजते सोचता है गिफ्ट लेके जाऊंगा उसके लिए और उसको मनाऊंगा और फिर से सब ठीक हो जाएगा. फिर गिफ्ट खरीदता है. फिर 6 बजे, फिर 7 बजे घर पहुंचता है. और जैसे ही घर पहुंचता है और वो सामने आती, फिर से झगड़ा चालू. ये कैसे हो गया? क्योंकि अंदर में मैं बैठा है एक, मैं मालिक हूं. आई एम राइट, यू आर रॉन्ग. फर्स्ट एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग, देन आई विल टॉक, अदरवाइज गो अवे. इस मैं को थोड़ा झुकाना है, दिस आई. ऐसा कहा जाता है जितने झगड़े होते हैं, मोर और बिकॉज ऑफ वॉइस, एंड 90% बिकॉज ऑफ टोन ऑफ वॉइस. किस ढंग से कहा गया, उसको डांट के कहा गया, इंसल्टिंग लैंग्वेज में. आप अपने जूनियर को सिखाओ, उसको पहले बहुत डांटो और फिर सिखाओ. सीखता है वो? नेवर. रन अवे, ही विल रन अवे. कभी नहीं सीखेगा. जिसको भी सिखाना है प्यार से सिखाना होता है, रहम दिल बन के सिखाना पड़ता है, तो ही वो सीखते. बच्चों को कहो ये करो, वो करो, वो करो, दे विल नेवर डू दैट. दे विल डू दैट विच यू हैव नॉट टोल्ड. वो वही करेंगे जो तुमने कहा है कि ये करो, वो दूसरा करेंगे कुछ. दैट इज द चाइल्ड साइकोलॉजी. उसको कहो ये सीरियल नहीं देखना है, वो वही देखेगा. उसको कहो ये नहीं पहनना है, वो वही पहनेगा. उसको कहो उधर से खिड़की से बिल्कुल नहीं देखना है, उधर उस लड़के के साथ मत खेलना, वो अच्छा लड़का नहीं है, उसी के साथ जाएगा. माइंड भी वैसा ही चाइल्ड है, बेबी है एक माइंड. माइंड को जबरदस्ती करो तो वो वही करेगा. सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट या फादर ऑफ साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्राइड इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी. उसने अपने जीवन में लिखा है कि मैं अपने बीबी और बच्चे के साथ एक दिन गार्डन में गए और टाइम पूरा हो गया, गार्डन बंद हो रहा था, गेट बंद हो रहा था. वो और बीबी बाहर आ गए पर देखा कि बच्चा गुम हो गया है, बच्चा है ही नहीं कहीं. सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला. सिगमंड फ्राइड अपनी वाइफ से पूछता है, कहीं तुमने उसको कहीं जाने के लिए मना तो नहीं किया था? वो कहती, हाँ, वो फाउंटेन के पास जाने के लिए मना किया था. वो कहता है, जाओ वहीं होगा. तो जाती है, देखते पानी में पैर पटक रहा है, वही है वो. वो पूछती है तुमको कैसे पता वो वहां है? वो कहते हैं पता रहने क्या बात है, दिस इज सिंपल फिलॉसफी। बच्चों को कहो ये नहीं करो और बिना समझाए करो तो वो वही करेंगे। इफ यू वॉन्ट टू टीच देम, टीच विथ अंडरस्टैंडिंग विथ लव, देन ओनली दे विल एक्सेप्ट। लेट दैट थिंग गो इन टू देयर अंडरस्टैंडिंग दैट वाई यू वॉन्ट टू डू इट, तो ही वो समझेंगे। और जो चीज हम ही नहीं कर रहे और दूसरों उनको कह रहे कि तुम करो, जैसे एक बच्चा भाग के आता है अपनी माँ के पास, कहता है माँ 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 शेर मेरा पीछा कर रहा है। माँ देखती है कुत्ता है, वो कहती है कितनी बार तुमको कहा है झूठ नहीं बोलना है, कितनी बार, तो हजार बार तुमको समझाया है कि वो कुत्ता नहीं, वो शेर नहीं, वो कुत्ता है। वो कहता है आपने हजार बार समझाया नहीं, यू आर ऑल्सो टेलिंग लाई, यू आर टेलिंग मी कि मैं झूठ बोल रहा हूं पर तुम भी तो झूठ बोल रहे हो, यू आर ऑल्सो टेलिंग लाई, यू नेवर टॉट मी 100,000 टाइम्स, देन यू कैनॉट टीच अदर्स वॉट यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ, यू कैनॉट टीच योर चिल्ड्रेन वॉट यू योर सेल्फ डोंट डू, यू कैनॉट टेल देम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू एक्सरसाइज वेन यू नेवर डू एक्सरसाइज, यू कैनॉट टीच योर चिल्ड्रेन ईट हेल्दी डाइट वेन यू योर सेल्फ नेवर टेक हेल्दी डाइट एंड कीप ऑन फॉलिंग सिक 100 टाइम्स, देन ईगो। नेक्स्ट फियर, नेक्स्ट चेन कौन सी है? भय, फियर। किसका भय? एक अननोन फियर सा रहता है, अगर मैं मर जाऊं तो इनका क्या होगा, अगर कोई बीमारी आ जाए तो क्या होगा, इनका क्या होगा, उसका क्या होगा, एक भय रहता है हमेशा, और ये बहुत बड़ा एक बंधन है। एंड आई थिंक मेडिटेशन इज द ओनली मेथड दैट कैन फ्री यू फ्रॉम ऑल द फियर्स, धीरे धीरे एटलीस्ट फ्री। फियर कौन सा है वो आइडेंटिफाई तो होगा, अभी तो फियर कौन सा है वही नहीं पता, सो मेनी फियर्स आर हिडन इन, कौन से है, क्या है, उसका क्या स्वरूप है, वी नेवर नो, बट देयर आर अननोन फियर्स इन द हार्ट, फोबियाज जिसको कहते हैं इंग्लिश में, साइकोलॉजी में, वी आरंट अवेयर ऑफ व्हाट आर दोज फियर्स। एक मिनट के लिए सभी अलर्ट होके बैठेंगे। स्थूल शरीर में विराजमान मैं एक चैतन्य ज्योति हूं, एक आत्मा हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप इस देह से पृथक एक चैतन्य स्वरूप है। मुझे अपने आप को देखना है, अपने जीवन को ही देखना है, किन बातों से मुझे डर लगता है, कहां कहां मेरा अहंकार मेरे जीवन की अशांति का कारण है, मेरे आपसी संबंध कैसे हैं पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा अहंकार ही सभी द्वंद का कारण है, मैं झुक नहीं रही हूं, नहीं रहा हूं, इसलिए रिश्तों में कड़वाहट है। Why this bitterness in relationship? मौन स्वचिंतन self analysis. क्यों आलस है ये, क्यों ये बहानेबाजी है, क्यों जीवन की चुनौतियों से मैं डरता हूं, क्यों अपना अनमोल समय व्यर्थ में गवा रहा हूं? मन शांत एकाग्र ओम शांत। नेक्स्ट गिल्ट कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट पॉइंट है गिल्ट कॉन्शियसनेस, अपराध भाव। मेरे से गलती हो गई है, मेरे से गुनाह हो गया है, नहीं करना था वो हो गया है, 10 साल हो गए उसको अभी तक उससे मुक्त नहीं हुए हैं। दैट फीलिंग ऑफ गिल्ट कॉन्शियसनेस इज लाइक अ चेन, इज लाइक अ प्रिजन। हमें ये सिखाया जाता है दूसरों को माफ कर दो, पर हमने अपने आप को माफ नहीं किया है। ये जो मेरे से क्राइम हो गया, अपराध हो गया, नोबडी नोज दैट, आई अलोन नो, आई एम एस्केप, आई हैव एस्केप फ्रॉम द लीगल थिंग्स, बट एक भय है, गिल्ट कॉन्शियसनेस। जैसे एक चर्च में आधी रात को फोन आता है, एक बाजू के हॉस्पिटल से नर्स फोन करती है, फादर कैन यू कम एंड सी वन पेशेंट, ही इज अबाउट टू डाई। फादर कहते हैं इतनी रात, चलो ठीक है आता हूं, क्योंकि एक व्यक्ति मर रहा है। और फादर पहुंचते, बहुत बारिश हो रही है, और जैसे ही उस पेशेंट के पास जाता है, वो पेशेंट एकदम चिल्लाता है, चले जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से, किसी से मुझे मिलना नहीं है, गो अवे। तो फादर क्या करे, बाहर निकल के बैठ जाते हैं, बिकॉज इट इज रेनिंग, सो उनको लगता है थोड़ी सी बारिश कम होने के बाद जाऊंगा। फिर सोचते एक बार नेक्स्ट ट्राई करता हूं, अनेक जाता है, फिर भी वो चिल्लाता है, पर थोड़ा सा कम चिल्लाता है। फिर बाहर आ जाते हैं फादर, थोड़ी देर के बाद फादर को लगता है एक बार फिर ट्राई करूं, फिर जाते हैं। अब वो पेशेंट शांत है, फादर पूछते हैं इट वॉज हिज, जैसे अभी लास्ट मोमेंट है उसका, बस अभी जाने वाला है, बीमारी कैंसर है फैल गई है शरीर में, मेटास्टेसिस सब जगह हो चुका है, ही कैन नॉट सर्वाइव, बट इज स्टिल कॉन्शियस, बट ब्रीदिंग इज लास्ट। तो फादर उससे पूछते क्या हुआ, वो कहता है फादर आई वॉन्ट टू कन्फेस बिफोर यू, 30 साल पहले मेरे से ऐसा एक अपराध हुआ, ऐसा गुनाह हुआ कि मैंने अब तक आज अपने आप को माफ नहीं किया, आई लिव्ड इन द माई होल लाइफ इन गिल्ट कॉन्शियसनेस। फादर कहते क्या हुआ, वो कहता है 30 साल पहले मैं गार्ड का काम करता था रेलवे स्टेशन पर, और एक बार मैंने बहुत दारू पी ली, और वहां से ट्रेन आ रही थी और मैंने वो नहीं दिखाई, और बीच से एक कार जा रही थी, उस कार में एक महिला थी और 2 उसके बेटे थे, और वो तीनों के तीनों मर गए मेरी गलती के कारण, क्योंकि मैं पी के था और वो मैंने वो फ्लैग नहीं दिखाया। और तब से मैं कानून से तो बच गया, बट अपने आप से कैसे बचूं, और अब भगवान के पास जा रहा हूं कैसे बचूं, आई लिव्ड माय होल लाइफ इन गिल्ट कॉन्शियसनेस, फादर प्लीज कैन यू हेल्प मी। फादर पूछते हैं वो कौन सा रेलवे स्टेशन था, फादर पूछते हैं वो कौन सा दिन था, और कौन लोग थे उस कार में, वो कहता है एक लेडी थी, उसके 2 बेटे थे। और वो फादर कहता है उस कार में एक चौथा लड़का भी था, एक बच्चा, और वो मैं हूं, और मैं बच गया हूं, और आज मैं तुमको माफ करता हूं। एंड विद दैट ही ब्रेथ इज लास्ट। तब कहीं उसको शांति मिली। यदि हमारे अंदर गिल्ट कॉन्शियसनेस है तो 2 काम करने, एक तो किसी से माफी मांग लेनी है, या खुद को माफ कर देना है। इस गिल्ट कॉन्शियसनेस के साथ पूरा जीवन नहीं बिताया जा सकता। किसी ऐसे व्यक्ति के सामने सब कुछ अपना सुना दो, कन्फेस कर दो कि दिस इज व्हाट आई हैव डन, दैट पर्सन कुड बी वाइफ, चाइल्ड, फादर, मदर, गुरु, कोई स्पिरिचुअल टीचर, कोई भी, कन्फेस कर लो कि ये किया है हमने। अपराध से भी बड़ा अपराध अपराध को छिपाना है. अ क्राइम मोर डेंजरस देन द क्राइम इज टू हाइड द क्राइम. जो कोर्ट में होंगे उनको इसके लिए भी कुछ ये बने हुए कोर्ट, पिनल कोड. चोरी की और डिस्ट्रॉय कर दिया एविडेंस को, दिस इज ऑल्सो अ क्राइम. तो गिल्ट कॉन्शियसनेस. नेक्स्ट पॉइंट HSP. हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज HSP? HSP क्या होता है? हाईली सेंसिटिव persons. HSP मतलब हाईली सेंसिटिव persons. सेंसिटिव, किसी ने कुछ कह दिया उदास नाराज, किसी ने कह दिया ये भोजन इतना अच्छा नहीं बना, हमने बनाया था उदास, अब बनाएंगे नहीं, जाओ, गलती कर दी बना के, दो दिन तक नाराजी. छोटी छोटी बात में उदास होना, छोटी छोटी बात में नाराज होना. एक झाड़ होता है, टच मी नॉट, छुई मुई, हाथ लगाया मुरझाया. ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है, उसको कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ बोल दिया कि दो दिन नाराज. HSP, दिस पीपल आर नोन एज हाईली सेंसिटिव persons. जीवन में फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है. यहां पे हमसे भी गलती होगी, दूसरों से भी होगी, दूसरे हमको सिखाएंगे तो क्या नाराज हो जाएंगे? यू विल टेक इट अदरवाइज ऑल द टाइम. ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया, एक्सेप्ट इट, ओके, टेक लाइटली. बहुत एकदम पूरा रात भर रोते रहना नहीं है. क्राइंग बेबीज, फीलिंग देवी, इसको क्या कहते हैं? फीलिंग देवी और फीलिंग देव. छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं. उसने मुझे ऐसा ही क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था, वाई ही डिड नॉट बिहेव नाइसली विथ मी. इट्स ओके, हर एक का मूड अलग अलग होता है, हर स्थान पर, हर समय. यू कैन नॉट कंट्रोल अदर पीपल्स मूड ऑल द टाइम. बेचारा गुस्से में होगा इसलिए बोल दिया, ठीक है, उसको भी तो समझो. पति को डांट पड़ी है उधर बॉस से, घर में आके सारा गुस्सा निकाल रहा है, जरूरी नहीं है उससे झगड़ा करना है, थोड़ा शांति से बैठ जाओ. उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, अरे कहा, बट व्हाट इज हिज मेंटल स्टेज? सो HSP इज ऑल्सो अ प्रिजन जिससे हमको मुक्त करना है. नेक्स्ट इनसेक्यूरिटी, नेक्स्ट है इनसेक्यूरिटी, असुरक्षा का भाव. यहां पे आता है अध्यात्म, यहां पे आता है फेथ, यहां पे आता है उस ईश्वर पर श्रद्धा, वो परमात्मा निरंतर मेरे साथ है, ये भाव. मैं जहां जा रहा हूं वो ईश्वर मेरे साथ है, वो इनविजिबल शक्ति मेरे साथ चल रही है. दिस इज द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड. कुछ दिखाई नहीं दे रहा है पर वो मेरे साथ है. एक स्टोरी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की. अमेरिकन एक सैनिक अकेला पड़ जाता है, उसके पीछे बहुत सारे दुश्मन के लोग सैनिक लग जाते हैं. वो भागता हुआ जाता है, भागता हुआ जाता है. बेचारा थोड़ा भक्त है, भगवान पे विश्वास है, और आज वो अकेला पड़ गया, उसके पीछे बहुत सारे सैनिक भाग रहे हैं दुश्मन के, बंदूक लेकर. वो बचते बचाते दिखता है खंडहर सा घर है, उस घर में घुस जाता है. उस घर में बहुत सारे कमरे, एक कमरे में घुस जाता है और वहां बैठ के भगवान से प्रार्थना करता है, नील डाउन, हे प्रभु मेरी रक्षा कर, अगर मैंने तुझे सच में प्यार किया होगा तो आज तू ही मेरी रक्षा कर, और कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है. और थोड़ी देर में उसको दिखता है कि दूर से सैनिक आ रहे हैं, सब घेर रहे हैं उस घर को. वो ऐसी प्रार्थना करता है भगवान से, हे प्रभु, हे प्रभु, और देखता है वो जो दरवाजा है वहां मकड़ी आ जाती है, स्पाइडर, और वो अपना जाल बुनना चालू कर देती है. वो भगवान से कहता है, प्रभु मैंने तुझे मदद मांगी थी, तूने ये मकड़ी को भेजा, ये क्या करेगी? तब तक ठप 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 वो सारे पैरों के जूतों की आवाज, सारे सैनिक कहते शूट, कैच हिम, वेयर इज ही, कैच हिम, वेयर इज ही. इधर घुस रहे, इधर घुस रहे, उधर घुस रहे, उधर घुस रहे. दो सैनिक उस कमरे में आते हैं जिसमें वो छिपा है, देखते हैं मकड़ी का जाल है, मतलब अंदर कोई गया नहीं है बहुत समय से, और लौट जाते. इनविजिबल पावर ने उसकी रक्षा की. तब कहीं वो जब चले जाते हैं फिर से गिरता है और आंखों से आंसू आने लगते हैं, हे प्रभु मैंने नहीं समझा तुम कौन हो और कैसे तू रक्षा करता है, How divine are your ways. Your ways are past our mind and understanding. परे है तू सबसे हमसे. हम जो नहीं सोचते वो तू सोचता है और तू हमारे लिए करता है. ये जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है ये तभी जाएगी जब स्पिरिचुअलिटी की जर्नी चालू होगी. हु इज गॉड, व्हाट इज गॉड, व्हाट इज माय कनेक्शन विथ हिम, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विथ हिम. व्हेन दैट लिंक, दैट रिलेशनशिप इज फोर्ज्ड, देन द न्यू लाइफ स्टार्ट्स, अ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट्स. क्योंकि नाउ आई एम नॉट अलोन बट द ऑलमाइटी अथॉरिटी, द ऑलमाइटी पावर, द सुप्रीम एनर्जी इज विथ मी. जहां मैं जा रहा हूं वो परमात्मा मेरे साथ है. भगवान हमारा साथी है, कोई मनुष्य साथी नहीं है. वो जो सर्वशक्तिवान है, जैसे शास्त्रों में दिखाया वो प्रह्लाद की कैसे रक्षा होती है वैसे हमारी भी रक्षा होगी. वो मीरा की कैसी रक्षा हुई वैसे ही हमारी भी रक्षा होगी. इफ यू हैव दैट फेथ इन हिम, वो फेथ अपने अंदर लाना है. नेक्स्ट पॉइंट, जेलसी. कोई आगे जा रहा है हमको जेलस होता है. कोई डिपार्टमेंट आगे जा रहा है, कोई व्यक्ति आगे जा रहा है, कोई बाजू का पड़ोसी आगे जा रहा है, वी फील जेलस. आग लगती अंदर, वाई आर वी जेलस. अरे जो आगे जा रहा है उससे सीखना है वो कैसे आगे जा रहा है. अगर जेलस हो गए, साइकोलॉजी का एक नियम है, वॉट एवर फीलिंग वी हैव फॉर अदर द सेम विल कम बैक टू अस. फॉर एग्जाम्पल, He is getting success. I feel jealous. So the success will feel jealous of me and the success will run away from me. Success, सफलता मुझसे दूर चली जाएगी क्योंकि मैं उससे jealous हो रहा हूं जो successful हो रहा है. वो चाहे कुछ भी हो सकता है. And remember one thing. Each soul is unique. Not just unique, but each soul is a masterpiece. हर एक की अपनी विशेषताएं हैं, हर एक में अपने गुण हैं, हर एक की कमियां भी है. इसके लिए देयर कैन नॉट बी कंपैरिजन बिटवीन टू सोल्स. हम अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते तुम वैसा जैसा उसने फर्स्ट आया तुम भी आओ, तुम भी ऐसा करो, तुम भी वैसा करो. एवरीवन इज डिफरेंट. यू कैन नॉट फोर्स योर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस अपॉन देम. एंड इफ यू डू दे विल स्टार्ट फीलिंग, हार्बरिंग दैट फीलिंग ऑफ जेलसी इन देम. नेक्स्ट, कार्मिक अकाउंट. कार्मिक अकाउंट बहुत सूक्ष्म फिलॉसफी है. हमने जो कुछ किया है वो सब कुछ हमारे साथ होगा, वापस आएगा. यू कैन नॉट एस्केप कर्मा फिलॉसफी. यू कैन नॉट एस्केप. इवन गॉड डजंट इंटरफियर इनटू कर्मा फिलॉसफी. जो कुछ हमने किया है या फिर जो कुछ हमारे जीवन में अब हो रहा है वो सब हमारा ही किया वापस आ रहा है. हमने भी किसी को दुख दिया था इसलिए किसी से दुख मिल रहा है. हमने भी किसी को इमोशनली टॉर्चर किया था इसलिए कोई हमको इमोशनली टॉर्चर कर रहा है. ऑल द कार्मिक अकाउंट्स आर गेटिंग सेटल्ड एंड दिस इज ऑल्सो अ प्रिजन, कर्मा. उसने अपने आप को सेटल करना है. हाउ वी विल सेटल? बाय गुड फीलिंग्स एंड गुड विशेस. चाहे वो कितना भी बुरा हो हम अपनी शुभ भावना नहीं छोड़ेंगे. उसके लिए वी विल हैव द सेम फीलिंग ऑफ लव. Because we cannot conquer hatred by hatred. वो तो कर्मा फिलॉसफी और बढ़ेगी, उसको तो कम करना है. Next, lament. Next is lament. Lament अर्थात पश्चाताप. जैसे वो guilt consciousness बताया वैसे ये lament है. पश्चाताप ही कर रहे, पश्चाताप ही कर रहे. अरे उससे अब निकलो बाहर. How can you live life only with repentance? Next is money-mindedness. And last is negativity. These are the total 14 points. Money-mindedness means paisa, 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 paisa. Din raat paise ke piche pagal hai. Uske siwa kuch soochta hi nahi dusra. Paisa bahut jaruri hai, mana. But don't call your greed as need. Leo Tolstoy, Russian author hua. उसने एक कहानी लिखी है, हाउ मच लैंड डज द मैन नीड. 1886 में पब्लिश हुई थी ये किताब, हाउ मच लैंड डज द मैन नीड. उसमें दिखाया है एक व्यक्ति है जिसका नाम है पखोम, रशिया में रहता है, खेत किसान है, छोटा सा खेत है. एक दिन एक परिव्राजक, एक सन्यासी उसके घर आता है, कहता है ये क्या कर रहे हो तुम. अरे उधर जाओ, वो दूसरी जगह है, वहां पर जमीन मुफ्त में मिलती है, फ्री में मिलती है, तुम यहीं फंसे हो. वो कहते हैं अच्छा. रात भर सो नहीं पाता, सुबह सब कुछ इधर का बेच के उस जगह पहुंचता है जहां पर जमीन फ्री मिलती है, और वहां पर लोगों से पूछता है यहां जमीन के क्या भाव है. वो कहते हैं भाव, दिस इज फ्री. एक शर्त है, सुबह उठते ही भागना चालू करो और जितनी जमीन तुम भागोगे वो तुम्हारी, पर शर्त यह है कि वापस उसी स्थान पर आ जाना। वो कहता है वाह इट्स क्वाइट ईजी, सुबह तो इतना भागूंगा कि जितना भाग के वापस आना है वो जमीन मेरी हो जाएगी। रात भर सो नहीं पाता, सुबह सुबह उठ के आता है, सारे गांव वाले खड़े होते हैं और वो तैयार और भागना चालू करता है। इतनी खुशी, आज तो इतनी जमीन ले लूंगा कि जीवन भर काम करने का काम नहीं। और भागना चालू करता है, भागता है भागता है भागता है भागता है, और भागते भागते उसको भूख लगती है। 12 बज गए, सोचता है अगर खाने के लिए रुका, खाना तो लाया हूं, खाने के लिए रुका तो जमीन कम हो जाएगी, खाना फेंक देता है, बाद में खाते रहेंगे जितना खाना है। भागता है भागता है भागता है, प्यास लगती है, पानी लाया हुआ है, पर सोचता है पानी पीने के लिए अगर रुक गया तो जमीन कम हो जाएगी, पानी की बोतल फेंक देता है। भागता है भागता है भागता है, दोपहर हो जाती है, सोचता है अब वापस जाना चाहिए क्योंकि पहुंचना भी तो है शाम तक, सूर्यास्त से पहले। पर देखता है सामने की जो जमीन है ना, बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, बड़ी फर्टाइल, थोड़ा सा और भागता हूं। भागता है और हाँफता है और भागता है और हाँफता है, भागते 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 और जाता है, 2 बज जाते, सोचता है अब तो वापस लौटना चाहिए। परंतु क्या, सामने की जमीन थोड़ी ज्यादा हरी हरी दिखाई दे रही है, ये इतनी जमीन मिल जाए तो बस काम पूरा हो जाए। और भागता है, 3 बज गए, 4 बज गए, फिर तो सोचता है अभी तो वापस लौटना ही चाहिए और फिर रिटर्न जर्नी चालू करता है। इतना तेज भागता है भागता है हाफता है भागता है हाफता है, रनिंग एंड पैंटिंग एंड रनिंग एंड पैंटिंग, और फिर दूर दिखाई देते हैं सारे गांव वाले खड़े हैं, बुला रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उधर सूर्यास्त हो रहा है और बस अब पहुंचने ही वाला है, लकीर को टच ही करने वाला है, थोड़े ही अंतर में धड़ाम से गिरता है और मर जाता है। गांव वाले कहते एक पागल आज फिर मर गया, क्योंकि रोज एक आता है। ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज योर आंसर, ऐसा क्यों हुआ, कैसे का क्यों हुआ? यस, ग्रीड, ऐसा क्यों हुआ, सेकंड कारण, ऐसा क्यों हुआ? हाँ ओके, नॉट अवेयर ऑफ नीड, तो वो एक ही हो गया, ग्रीडी हो गया वो, और एनी अदर कारण? हाँ, टाइम मैनेजमेंट की कमी। अगर दोपहर में रुक गया होता और टर्न कर गया होता तो पहुंच गया होता, टाइम मैनेजमेंट में गलती हो गई। हम भी तो भाग रहे हैं, भाग रहे भाग रहे भाग रहे, वो कहते रुको थोड़ा, हम कहते नहीं, सामने की जमीन थोड़ी ज्यादा ही हरी हरी दिख रही है, एक प्लॉट फिर ले लेता हूं, एक क्लिनिक और, एक डिग्री और, एक थोड़ा घर वहां बना लेता हूं, एक जॉब थोड़ी कर लेता हूं, थोड़ा पैसा और मिल जाए, थोड़ा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, अभी बैंक बैलेंस भी बढ़ गया अभी तो लौटो। परंतु सामने की जमीन थोड़ी ज्यादा ही हरी दिख रही है। बाजू वाला थोड़ा, एक व्यक्ति था जिसके पास इतना आलीशान घर था, इतना बड़ा घर था, जो भी मेहमान आता था उसको पहले अपना घर दिखाता था, ये स्विमिंग पूल, ये वो ये वो ये वो, ये होम थिएटर, पूरा अपना घर ही दिखाते फिरता था। इतना उसको गर्व था कि उसके जैसा घर पूरे शहर में किसी का नहीं था। और एक बार उसका मित्र आया जिसको हर बार वो अपना घर दिखाता था, पर इस बार कुछ भी नहीं दिखा रहा है। वो मित्र पूछता है क्यों आज घर नहीं दिखाना है क्या? वो कहता है घर ये तो झोपड़ी है, सामने देखो, वो सामने जो दूसरा घर बना है ना वो है घर, उससे भी बड़ा घर सामने किसी ने बना दिया, तो वो देखने के बाद ये क्या बन गई, झोपड़ी। और आगे और आगे, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, एंड जर्नी इज लॉस्ट। नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न बैक, नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप, टू टर्न बैक, क्योंकि बहुत कुछ करना बाकी है। अपने आप को ही, आत्मा को भूल कर, आत्मा को खोकर संसार पा लिया तो क्या पा लिया, कुछ भी नहीं। सिकंदर जब संसार से गया उसने ऑर्डर किया था, जब मैं मरूंगा मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर होंगे। उसके सिपाहियों ने कहा व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट द कस्टम। वो कहा कि मैं दिखाना चाहता हूं कि मैंने सारी दुनिया जीत ली, पर जाते समय अर्थी के हाथ बाहर थे, कुछ भी नहीं है हाथ में, खाली। आर वी द वन लाइक दैट? तो ऐसी टोटल 14 बातें आपको बताई है। जिससे अपने आप को मुक्त करना है। पहला ए फॉर आलस अलबेलापन, बी फॉर बहानेबाजी, सी फॉर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है थोड़ा, डी फॉर डिजिटल स्लेवरी, ई फॉर ईगो, एफ फॉर फियर, जी फॉर गिल्ट कॉन्शियसनेस, एच फॉर एच एस पी हाईली सेंसिटिव पर्सन। नहीं बनना है यहां तो बहुत सहन करना होता है जीवन में, सिक सिक झुक झुक मरमर बहुत सहन करना पड़ता है यहां पर। जब तक सहन नहीं करेंगे वो मूर्ति नहीं बनेगी, और मूर्ति को जब फिनिशिंग होता है ना, नाक बनानी है तो फाइन स्ट्रोक दिए जाते हैं, तो जब सहन करना पड़े तो क्या समझना मूर्ति बन रही है, और थोड़ा ज्यादा ही कोई दुख दे तो समझना थोड़े ज्यादा ही सुंदर मूर्ति बन रही है। आंखें को ठीक करना है, कान को ठीक करना है, फाइन स्ट्रोक्स लगेंगे, और कौन देंगे ये स्ट्रोक, अपने ही मित्र, अपने ही दोस्त, उनका धन्यवाद जो विरोध करते हैं, जो गलतियां निकालते हैं, क्योंकि वही तो सिखाते हैं, दूसरा कौन सिखाएगा। उनसे हम ज्यादा सीखते हैं, निंदकों से, क्रिटिक्स से, प्रेज जो करने वाले उनसे हम तो कुछ नहीं सीखते। गुड दैट दे आर क्रिटिसाइजिंग अपोजिंग। एच आई से इनसेक्योर है। जे से जेलसी, अपने आप को देखना है कहीं मुझ में जेलसी तो नहीं। के से कार्मिक अकाउंट्स, सारे कार्मिक अकाउंट्स मुझे सेटल करने हैं, आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट न्यू फ्रेश कार्मिक अकाउंट्स। एंड वॉट इज द वे, साइलेंस। वॉट इज द वे, पीस। वॉट इज द वे, गिविंग गुड विशेस एंड प्योर फीलिंग्स टू दैट सोल। शुभ भावना शुभकामना देते रहो, चाहे कितना भी कोई विरोध कर रहा है, स्टे काम, वो शांत हो जाएगा एक दिन। उसके बाद में एल, एल फॉर लैमेंट, लैमेंटेशन, पश्चाताप नहीं। एम फॉर मनी माइंडेडनेस, ये पागलपन से बाहर निकलना है। और लास्ट इज निगेटिविटी। निगेटिविटी, जितने निगेटिव से मन भरा है उससे कभी भी मन में शांति नहीं हो सकती। क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी। फॉर दैट यू विल हैव टू लिसन टू पॉजिटिव स्पिरिचुअल क्लासेस, स्पिरिचुअल लिटरेचर, पॉजिटिव लिटरेचर, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, मेडिटेशन। इससे ही पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होंगे, नहीं तो पॉजिटिव थॉट्स का तो अकाल है संसार में, है ही नहीं कहीं पर। जहां किसी भी चैनल में खोलो, डिबेट चल रही है, ब्लेम गेम चालू है। सबसे ज्यादा गेम कौन सा खेला जाता है दुनिया में, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कौन सा, ब्लेम गेम। हर डिपार्टमेंट में एक ही गेम चालू है, कौन सा, ब्लेम। यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुम्हारी वजह से हुआ है। तो ऐसी ये 14 बातें हैं, इन 14 से अपने आप को मुक्त करना है एंड टैप इनटू द इनर फ्रीडम। फिर से लास्ट एक मेडिटेशन करते फिर सेशन का एंड करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान मैं एक चैतन्य ज्योति हूं। मैं एक दिव्य आत्मा हूं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। संपूर्ण चेतना भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित, सच्चित आनंद स्वरूप। सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, मन शांत हो गया, एकाग्र हो गया। सभी आंखें बंद करेंगे, और संकल्प करेंगे, मुझे सभी सूक्ष्म बंधनों से मुक्त होना है, जीवन वैसे जीना है जैसे जिया जाए, जिससे इस जीवन में सुख हो, शांति हो, संबंधों में मधुरता हो, विचार श्रेष्ठ हो, आचरण नैतिक हो, जीवन में संतुष्टता हो, डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये कार्य मुझे करना है। आज इस सभा में बैठे बैठे ये मेरा प्रण है, मुझे अपने अस्त व्यस्त जीवन को फिर से स्थिर करना है। ये एक दिन का कार्य नहीं है, पर ये यात्रा मैं आज चालू करता हूं, करती हूं। और अब इस यात्रा में स्वयं भगवान मेरा साथी है। और जब वो मेरा साथी है तो सब कुछ आसान है। ए मेरे मन, ये एक दिन का किस्सा नहीं है, ये एक दिन का कार्य नहीं है, पर ये कार्य मैं आज चालू कर रहा हूं, स्व परिवर्तन का, खुद को बदलने का। दिस जिगेंटिक टास्क ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आई बिगिन टुडे।
बनाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं, खुद के होने की पहेली सुलझाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं, कदमों में जमा जो थका चैन की नींद आती वहां, कदमों में जमा जो थका चैन की नींद आती वहां, इतनी सुहानी बना होना पुरानी तेरी दास्तां, जज्बातों की बातों में ना आना, जज्बाती नजरों को दिखता धुंधला, चंदा तक पक्का सा रास्ता बनाना जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं।